अब इसके बाद एक और आजमाइश थी। तीसरा किरदार जो आज आपको बताया गया था वो कौन सा था? अरबों के लिए शिकार, एक ऐसी खूबसूरत चीज थी जिसको आज के बच्चों के लिए आप वीडियो गेम्स का नाम दे दें, टेम्पटिंग थी। दूसरी बात है कि गोश्त हासिल करने का ओनली वे था। जब वो अहराम के लिए निकलते तो अहराम की हालत में शिकार करना कराना सब मना है। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की, कैसे की आइए इसको पढ़ते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह इससे अंदाजा होगा कि वो किस दर्जे के हक को मांगने वाले थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय्यिम मिनस्सैद, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के जरिए से सख्त आजमाइश में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और नेजों की जद में होगा। यानी इतना आसान होगा शिकार करना कि बस नेजा मारो और शिकार को हासिल कर लो, ये देखने के लिए कि तुम में से कौन इससे गायबाना डरता है। फिर जिसने इस तंबीह के बाद अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से तजावुज किया, इसके लिए दर्दनाक सजा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अहराम की हालत में शिकार न मारो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसने मारा हो, इसी के हम बल्ला एक जानवर इसे मवेशियों में से नजर देना होगा, जिसका फैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे, और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो इस गुनाह के कफारे में चंद मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या इसके बेकदर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने किए का मजा चखे। हाँ, पहले जो कुछ हो चुका इसे अल्लाह ने माफ कर दिया। इस्लाम का खूबसूरत रूल, अफअल्लाहुम्मा सलव। लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत को दोहराया तो अल्लाह इसे बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। शिकार के जरिए वो ईमान वाले वो आजमाए गए, आज हम कैसे आजमाए जाते हैं? आप देखिए, आज तो हम एहराम बांध लें, हमें तो कोई शिकार की आदत भी नहीं है, और शिकार करना कराना हमारे लिए कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पारे के थीम को दोहराएं, मैं आपके साथ शीट शेयर करती हूँ, तो आपका जहन ज्यादा काम करेगा कि आज हम बहुत सारी नेकियां करके भी नेकी की रूह से महरूम क्यों रहते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी जिंदगियों में उस नेकी की वो कदर नहीं होती। ईमान वाला जब भी कोई नेकी करता है, अल्लाह ताला उससे उस नेकी की असल दिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि हम इस पारे को जो देख रहे हैं उसके अंदर जो मेन थीम क्या है कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म आए और दूसरी तरफ कोई नफ्स का तकाजा, कोई खानदान का तकाजा, कोई मुआशरे का तकाजा। नतीजा क्या निकलेगा कि जब आप और मैं इन तकाजों में से अल्लाह की बात को मान लेते हैं, अल्लाह ताला हमारा दिल खोल देता है, आसान हो जाता है। एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता आसान करती है। इसके बरक्स अगर एक दफा आपने अल्लाह को नाराज करके खुद को मनवा लिया, दूसरे मौके पे आपने अपने बच्चे को खुश कर लिया, अल्लाह को नाराज कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को राजी करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। जैसे ना चले ना तो चलना मुश्किल लगता है, जो लोग काम नहीं करते उनको थोड़ा सा काम भी बहुत मुश्किल लगता है। तो बिल्कुल यहाँ इन सारी चीजों को समझिए, आजमाइश हमेशा मनपसंद चीज पे आती है। एक मैंने छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था इसी आयत के बारे में कि सहाबा की आजमाइश तो की गई थी किस चीज के साथ, शिकार के साथ। आज हमारी आजमाइश किस चीज से है, सेलफोन के साथ। यानी इस पे एक आर्टिकल इंशाल्लाह आपको भेजूंगी, इसके ऊपर मैंने आज की बात में शेयर भी किया था कि आज मस्जिद में सिर्फ 10-15 मिनट नमाज के दौरान सेलफोन बंद करना बाज दफा लोगों को शिकार से रोकने के लिए मुश्किल लगता है। लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय्यिम मिनस्सैद, आज हमारे गैजेट हमारे हाथ में, नजर रुकती नहीं, हाथ नहीं रुकते। बाज दफा आप देखिए गंदी चीजें आ जाती हैं, तो मेरे आपके लिए इस एक आयत पे आज अमल क्या है, हर वो चीज सेलफोन से हो या किसी और गैजेट से हो जिसने आपको मुझे अल्लाह के हुक्म से दूर कर दिया, उससे रुक जाना है। अगर आप आज की आयत तदब्बुर देखें जो हम इंशाल्लाह आगे सूरत अल-अनाम आयत 15-17 में देखेंगे, तो वो क्या है, कुल इन्नी अखाफ इन असईतु रब्बी अज़ाब यौम नज़ीम, मुझे गुनाह करते हुए अल्लाह की पकड़ से डर लगता है। इसको सोच में रखें, क्योंकि यहाँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि पूरे पारे में से ये फीलिंग लेकर उठे। हर आयत सुनते वक्त खुद से पूछिए, क्या मुझे भी गुनाह करते हुए डर लगता है? फिर दूसरी बात है कि मैं युसरफ अन को यौमिन फ़कत रहमहू वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और जो उस दिन हटा लिया गया उससे उस दिन उस पर रहम हो गया, और यही कामयाबी है। यानी जिसको अल्लाह ने आखरत के पकड़ से बचाकर जन्नत दे दी वही कामयाब है। वहीं यमसस्कुल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, वहीं यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब आप और मैं सोचिए, आपके मेरे सामने कोई नाफरमानी का काम आता है, कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसी दावत, कोई ऐसी चीज जिसको मानना या फिर अल्लाह की माननी है, आप उस वक्त ये जुमले खुद से कहें। आप कह दीजिए, अगर मैं अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। कितना खूबसूरत जुमला है, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अक्सर साथियों से कहती हूँ ये जुमला अरबी में याद कर लें, ये ना सही तो रब्बी अजाब यौम नजीब, कोई आपको गुनाह की दावत दे, कोई नाफरमानी की दावत दे, कोई अल्लाह से आगे जाने की दावत दे, कह दें इन असई तो रब्बी अजाब यौम नजीम, मुझे डर लगता है, इन्नी अखाफ इन असई तो रब्बी अजाब यौम नजीम। ये चीज़ अंदर लानी पड़ती है। आज दिन ब दिन गुना हमारे लिए आसान से आसान हो रहा है। पहले देखिए लोग कभी जाते थे, छुपते छुपाते बड़ों से झूठ बोलते, फिर किसी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखते थे। आज आपका बच्चा अपने बेड में मैट्रेस के अंदर गद्दे के अंदर छुप के फिल्म देख सकता है, माँ को कानो कान खबर नहीं होगी, माँ कहेगी वो पढ़ रहा है, वो जो मर्जी देखे। गुनाह इतना आसान है। तो यहाँ इस आयत को फिर हाईलाइट करके कहूंगी, तनालुहू पा लेते हैं उसको, ऐदीकुम व रिमाहुकुम, जब गुनाह के मवाके हाथों में आ जाएं उस वक्त अल्लाह की पकड़ का डर बंदे को रोकता है। और आने वाली नस्लों के लिए तो ये गुनाह और भी आसान होगा। अब तो ये हाथों में कुछ दिखता है, तब तो दिखना भी कोई नहीं, सिर्फ लेजर है, अपनी उंगली दीवार की तरफ करेंगे, वहां बड़ी बड़ी स्क्रीनें बन जाएंगी। आपको मुझे नहीं पता आने वाले दौर में तो हमारे दिमागों में चिप्स लगा दी जाएंगी, छोटी सी टेलीफोन चिप है, आप अपने हाथ में लगा रहे बॉम्ब, इसको क्लिक करें जो मर्जी देख लें, इसी में सेव करके लेके जाएंगे आप चीजें अगली सदियों में, ये सब खत्म हो जाएंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर, सेलफोन, सिर्फ इशारों में, टच सिस्टम पे लोग दुनिया में चलेंगे। क्या चीज रोकेगी? ये चीज, इन्नी अखाफ इन असई तो रब्बी, रब का खौफ पैदा करें, ये तकवा सिखा रहा है ये पारा। आप, मैंने आपको तذکرہ भी किया था पिछले पारे में, सूरत मायदा तकवा से भरी हुई सूरत है, ये खौफ हमें सीधा रखेगा। फिर आज की हदीस देखिए, वो भी इसी से मुतल्लिक है। अल्लाह के नबी सल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बतलाइए कि आदमियों में कौन ज्यादा होशियार और दूरंदेश है। अब आपसे भी कोई ये सवाल पूछे तो मोस्टली लोग क्या कहेंगे, जो पैसा बड़ा कमाए, जो बहुत अक्लमंद हो, बड़े अच्छी शॉपिंग करना जानता हो। नहीं, आपने फरमाया वो जो मौत को ज्यादा याद करता है और मौत के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करता है। मैं और आप इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं। जो लोग ऐसे हैं वही दानिशमंद और होशियार हैं, उन्होंने दुनिया की इज्जत भी हासिल की और आखिरत का एजाज और इकराम भी। ये मोजम सगीर तबरानी की रिवायत है, सहाबा कराम को आप इस पे लेके देखिए, रोते थे, उनको खौफ आता था, किस बात पे कि कल अपने रब के सामने जाएंगे तो क्या देंगे। अब दिन ब दिन हम इतना लुब्रिकेट और इतना डाइल्यूट करते जा रहे हैं अपने दीन को कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ नमाज रोजे पर रख दिया। अच्छा, कम से कम नमाज तो पढ़ लो, जाओ चार टकरे मारो, यही बहुत है। तकवा सिखाने वाली अब माएँ नहीं है, खुदा खौफी सिखाने वाली माएँ मसरूफ हो गई, इल्ला माशाल्लाह, आप जैसी माएँ तो होंगी, पर ये कितनी है पूरे शहर में, आटे में नमक के बराबर। खौफ याद दिलाइए, मैं यखाफहु बिलगैब, आयत क्या बता रही है, जो अल्लाह को बिन देखे डरेगा वही बचेगा, वरना याद रखिए मैं और आप हमेशा सर पे नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद आज की दुआ सूरत निसा आयत 75, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इस बस्ती से बाहर निकाल जिसके रहने वाले सख्त जालिम हैं, हमारे लिए अपने पास से गैब से किसी हामी को भेजिए। और सूरत मायदा की यही दुआ जो भी हमने सुनी, रब्बना मन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, ऐ रब हम मुसलमान हो गए तो हमको भी इन लोगों के साथ लिख लीजिए जो तस्दीक करने वाले हैं। तो क्या बात समझ आई, अब इतनी शीट काफी है, अब आप वापस आ जाइए इसी आयत पे। जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा हम अल्लाह के हुक्म नहीं मानेंगे। अगली आयतों में सी फूड के हलाल होने की बात है, ओहिल्ला लकुम सईदुल बहरी व तअमुहु मताअ लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया। देखिए पीछे पाबंदी लगी तो खौफ आता है कि अच्छा फिर भूख से मरेंगे, कहा नहीं, सब मछलियां निकाल लो, उसको भून के खा लो, जहां तुम ठहरो वहां भी इसे खा सकते हो और काफले के लिए ज्यादा राह भी बना सकते हो। अलबत्ता खुशकी का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया, बस बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। इसको फिर 3 सेकंड सोचिए, दोबारा तकवा, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तुहशरून, खुद से पूछते हैं जब अल्लाह के सामने जाएंगे उस वक्त क्या हाल होगा। अल्लाह को सामना कर सकती हूँ, अल्लाह को अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ, अगर इस दुनिया में अल्लाह की नाराजगियों के साथ चली गई तो वहां जाकर क्या बनेगा। इसके बाद कुछ चीजें खाना काबा से मुतल्लिक, जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, अल्लाह ने मकाने मोहतरम काबा को लोगों के लिए इज्तमाई जिंदगी के क्याम का जरिया बना दिया। और माहे हराम और कुर्बानी के जानवर और कलादों को भी इस काम में मुआविन बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों जमीन के सब हालात से बाखबर है, इसे हर चीज का इल्म है। खबरदार हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी सख्त है और इसके साथ बहुत दरगुजर और रहम करने वाला भी है। फिर रुकिए इधर, अल्लाह की दोनों सिफात उरूज पे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला जब पकड़ने पे आता है तो पकड़ता भी बड़ा सख्त है, और जब अल्लाह सुबहाना ताला रहम करने आता है तो छोटी छोटी बातों पे रहम करता है। ये पारा आपको मुझे हक की पहचान करवा रहा है, और अंदर तकवा हो, दिल में हक की तलब हो, तो अल्लाह के हुक्म से आसान होता है। आप देखिए कि हिदायत की चिंगारी हर एक के दिल में उभरती है। हबशा वालों के दिल में उभरी, उन्होंने उसको कैश कर लिया। सहाबा कराम को शराब का हुक्म मिला कि रुक जाओ, रुक गए, कैश हो गई। शिकारी शिकार कर सकते थे। अबू लुबाबा का एक बड़ा खूबसूरत वाक्या आता है कि वो खुदैबिया के सफर में सहाबा के साथ थे, लेकिन अहराम की नियत से नहीं थे। दूर से एक ऐसा जानवर दिखा जिसको शिकार करना सबको बड़ा मरगूब था। इन्होंने सोचा कि बाकी तो मेरी मदद नहीं करेंगे, चले मैं इसको करता हूँ। पहली तो बात यह है कि ये बैठ के अपना कोई कपड़ा या जूता सी रहे थे, इन्होंने उस जानवर को नहीं देखा। अब बाकी जानवर जो अहराम की हालत में, वो देख रहे हैं उस जानवर को, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अहराम की हालत में ना शिकार कर सकते हैं और ना शिकार कोई तरफ इशारा कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि उठा बोलो बाबा शिकार कर लो, खुद ही बैठे और हल्की हल्की आवाजें बना रहे हैं कि जिससे जरा बोलो बाबा ऊपर तो देखे। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो जानवर था, पकड़ने लगे, फौरन इनका जो नेजा था वो नीचे गिर गया। ऊपर बैठे हुए दूसरों को कह रहे जरा मुझे ये पकड़ाना नेजा, कोई नहीं उठ रहा। मैं ये खाफ हूँ बिलगैब, कहा नहीं, अहराम की हालत में ये नेजा भी नहीं उठा सकते। उनको बड़ा गुस्सा आया, खैर उतरे नीचे, नेजा पकड़ा, मारा। जब उस जानवर को शिकार करके काटा, बनाया, पकाया, तो सारे सहाबा मिल के खाने में खा सकते हैं, गोश्त शिकार नहीं कर सकते। ये जज्बे आज किधर है? ये है टाइम मैनेजमेंट। नेकियों से आपकी जिंदगी में बरकत आती है। आपकी थोड़े सालों की जिंदगी में अल्लाह आपसे बहुत नेकियां लेता है। याद रखिए कि गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी की बरकत चली जाती है। यही बात कहकर अल्लाह ने यहां बता दिया कि देखो, हिदायत की जब तलब जागे ना, फौरन लब्बैक कह दो। और कुरान पढ़ने के दौरान मैं आप सबको एक छोटी सी नसीहत करूं, जिस आयत पे दिल में ख्याल आ गया ना कि ये नेकी कर लो, वहीं लिख ले, अपने पास रिमाइंडर में लिखें, खुद से कह दें, अपने साथ वालों से कह दें कि आज से ये नेकी कर रही हूं, फिर ताकि कल अगर आप भूलने लगेंगे ना तो वो भूलने नहीं देगा। हिदायत जो होती है ना, ये गयूर मेहमान है, बड़ी ये ईगो होती है इसमें, एक दफा आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक करती है, आप दरवाजा नहीं खोलते, नाराज होके चली जाती है। इंग्लिश में कहते हैं कि गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड। हिदायत की पुकार को डिले करते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो नहीं आएगी। हिदायत पे आना है तो सोचने की जरूरत नहीं, मशवरों की जरूरत नहीं, किसी की एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। अक्ल तो हमेशा सेल्फ प्रिजर्वेशन सिखाती है। हजरत इब्राहिम ने अक्ल से पूछा होता तो कभी आग में ना कूदते। असल बात यह कि आप और मैं अपने लिए डिसाइड करें कि मैंने अपने अल्लाह से कैसा ताल्लुक पैदा करना है। देखिए, इतना आसान है पारा पढ़ना, मैं आपको 1 घंटा 50 मिनट में पूरा पारा करवा सकती हूँ अल्लाह की तौफीक से, और ये किया हुआ है हमने, आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये चीजें जो हमारे अमली पहलू हैं, इसको समझे पढ़े बगैर अगर अल्लाह से ठंडा ठंडा गैर जज्बाती ताल्लुक हुआ, कुरान पढ़ लिए, एक और दिल पे तय लगेगी, 2017 का दौरा कुरान भी कर लिए, कुछ तो गिनते हैं, 7 से 8 9 10 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह। हम अमल कितना आया, दिल कितना बदला है, तकवा कहाँ आया, आपकी जिंदगी में कुर्बानियां देनी कितनी आई हैं, हिजरतें कितनी आसान आई हैं। अंबिया कराम सबर के मीनारे थे, क्यों? क्योंकि वो जब अल्लाह का कोई हुक्म सुनते थे तो उसको फौरन मानने के लिए तैयार हो जाते थे। और एलमुअन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, इस पे गौर करते हुए आगे चलिए। माल रसूल इल्लल बलाग, रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, आगे तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का जानने वाला अल्लाह है। कोई किसी को जबरदस्ती हिदायत पे नहीं लगा सकता। दुआ कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कर सकते हैं। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो, पाक और नापाक बहरहाल यकसा नहीं, ख्वाह नापाक की बख्तात तुम्हें कितना ही फरीफता करने वाली हो। बस ऐ लोगो, जो अकल रखते हो अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। बस दफा हम नापने तोलने लगते हैं, हम कहते हैं देखो ना ज्यादा तो है ना, लेकिन देखिए ज्यादा होना बेहतर है कि कीमती होना बेहतर है? डायमंड की एक रिंग बेहतर है या जरकोन की 100 अंगूठियां बेहतर है? कीमत के हिसाब से देख लीजिए, वैल्यू के एतबार से देख लीजिए, हर वो चीज़ जो ज्यादा कीमती है वो थोड़ी भी हो तो बेहतर है। अब यहाँ बाज़ लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी देखो, मेजोरिटी देखो क्या कुछ कर रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं खबीज ज्यादा भी होगा तो अच्छा नहीं होगा। सारी दुनिया गलत चीजों को प्रमोट करे, लिविंग टुगेदर को सारी दुनिया बेहतरीन स्लोगन्स दे दे, ये कभी भी अच्छा नहीं होगा एक शादीशुदा कपल के मुकाबले में। हमेशा याद रखिए थोड़ा हलाल का तय्यब बेहतर है। क्या आप अपने घर के खाने में ज्यादा करने के लिए 6 प्याज डाल लेते हैं कि चलो हड्डिया भर तो जाएगी, टेस्ट नहीं आएगा, उसमें कोई मजा नहीं आ सकेगा। जिंदगी गुजारी है तो क्वालिटी की गुजारे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी लाइफ। व्हाट अ क्वालिटी लाइफ! और सहाबा की मिसालों पे गौर कर रही हूँ, मैंने इस बारे में 10 दफा शायद देखा और मुझे ये 3 मिसालें ऐसे मेरे दिल पे चिपक गई। ये होती है क्वालिटी लाइफ। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, इसको कहते हैं टाइम इज लाइफ और लाइफ इज टाइम। करके चले गए, आज तक उनकी बातें हमारे आपके लिए हिदायत के जरिए हैं। रोज कितने मरते हैं इस दुनिया में, कौन मरा आज मरे कल दूसरा दिन, तीसरे दिन तो सबर आ ही जाता है, चौथे दिन हमारे बदले में कोई और दूसरा उस रिश्ते पे आ चुका होता है। असल बात है कि वो जिंदगी गुजार के जाइए कि जिसके बाद आपका मेरा बेहतर मुस्तकबिल हो। रह गई खबीस, आप आउट ऑफ वेडलॉक बच्चा पैदा करें। लोग कहते हैं लव चाइल्ड है ये, क्या मतलब लव चाइल्ड है? ये प्यार के नतीजे में बच्चा पैदा हो गया, नाम तो बड़ा प्यार है। अल्लाह कहते हैं ये खबीस है। अब देखिए लव्स इंटरेस्ट क्या है, कितना इंटरेस्टिंग लफ्ज है लेकिन खबीस है। खूबसूरत स्लोगन्स में आप खराब चीजों को, गंदी को साफ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि नई बोतलों में डालकर शराब पिलाई गई। शराब गंदी या बोतल कितनी मर्जी खूबसूरत बना ले, तो जिंदगी से हर खुबस को निकाल दें, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह बरकत आएगी। फिर एंड पे कह दिया फत्तकुल्लाह, गिन रहे हैं आप लोग तकवा की तादाद कितनी दफा इस सूरत में? चलिए फिर आप गिनिएगा घर बैठ के जाकर। या उलिल अलबाब, ए अकल वालों, देखिए अकल की बात की है इधर। लअल्लकुम तुफ्लहून, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशया, ए लोगों जी मान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें ना गवार गुजरे, लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया अल्लाह ने इसको मुआफ कर दिया, वो दरगुजर करने वाला और बुरदबार है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुबतला हो गए। बहुत सवाल करना ना तो दीन के रंग में पसंदीदा काम है और ना दुनिया के। आप देखिए कोई आपसे आपके जाती सवाल पूछने लग जाए कितनी चिढ़ आती है, कितना बुरा लगता है वो शख्स जो आपसे फजूल बेकार सवाल करता जाए। वो जैसे कहते हैं किसी ने इमाम मालिक से पूछा, माँ उमरू का, ए इमाम तेरी उम्र क्या है? कहने लगे कि माँ यकफी का, तुझे क्या लगे, तुझे इससे क्या फायदा होगा। बस दफा लोग बहुत सवाल करते हैं, याद रखिए दीन के नाम पे बहुत सवाल करने वाले अमल फिर भी नहीं करते। एक सवाल में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, सवाल बराए सवाल, ये गलत चीज है। आप देखिए कोई किसी डॉक्टर के पास जाए कहे मुझे 5 मिनट में पूरी मेडिसिन सिखा दे, मुमकिन है? किसी लॉयर के पास जाए 10 मिनट में मुझे लॉयर बनना सिखा दे, मुमकिन है? इसी तरह के बेतुके सवाल बाज लोग इल्म वालों से करते हैं। बस एक 5 मिनट की बात है, बस सर ये बता दें, और हो सकता है वो इतना अहम इश्यू हो कि 5 मिनट में थोड़ा बताने में और कंफ्यूजन हो जाए। याद रखिए कुछ इश्यूज होते हैं कि जिसको डिटेल से ही समझे तो समझ आती है। इल्म के लिए वक्त लगाइए, इल्म के लिए डिवोट हो। अल्लाह ने 23 साल में ये कुरान उतारा था, और खुशकिस्मती है कि आज यही कुरान 1.5-2.5 साल फोकस होके लगा लेना अल्लाह के हुक्म से आ जाता है। इस रमजान में ये नियतें करके उठें कि अल्लाह ये तो भी पानी की तरह बह रहा है, मैंने इसका लफ्जी तर्जुमा याद करना है, मैंने इसको अपनी जुबान में याद करना है। फिर आप रोएंगे जब आपको तिलावत समझ आएगी, फिर तरावियों में आप ये नहीं कहेंगे मौलवी सब लंबा पढ़ रहे हैं, फिर जहां तिलावत सुनेंगे आपको ऐसे लगेगा आपको किसी ने आवाज दी है। क्या कर सकते हैं ये मेहनत, कर सकते हैं ये नियत, ये कर लीजिए, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पेश आओगी इंशाल्लाह। बस लोगों के सवाल सिर्फ चस्का होते हैं, बस सिर्फ फिरका वारियत चेक करने के लिए सवाल पूछते हैं, इनका मसलक क्या है। पहले इल्म लीजिए, जज्ब कीजिए, फिर समझना है 10 दफा सवाल पूछिए। सिर्फ सवालों से जवाब, सवाल जवाब से कभी दीन नहीं समझ आया। और आज आप देखिए कि हमारे कल्चर में फेवरेट थिंग क्यूए सेशंस, सवाल जवाब, सवाल जवाब। हर साल रमजान आता है सवाल जवाब पूछते हैं, अगले साल तक फिर भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो दीन के मामले में संजीदगी अता फरमाए। इसके बाद अब कुछ बेतुकी रस्में, वही बात, हक बमुकाबला खानदानी दीन, रस्म और रिवाज वाला दीन। मक्का वाले इतनी बेतुकी चीजें करते थे, जब कोई उनको मना करता तो उसके ऊपर कहते क्या हर्ज है। आइए जरा देखते हैं, और सूरत अलअनाम में एंड तक आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी कि हक के मुकाबले में बाप दादा का कायम किया हुआ दीन। फरमाया, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। अल्लाह ने ना तो कोई बहीरा मुकर्रर की, ना साहिबान, ना वसीला और ना हाम, मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं। इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं, कैसी वहमी बातों को मान रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है आओ इस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया, आओ इस पैगंबर की तरफ, तो ये जवाब देते हैं हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए जाएंगे, हाँ वो कुछ ना जानते हों और सही रास्ते की इनको फिक्र ही ना हो। आप देखिए कि एक जुमला हमारे कल्चर में भी बहुत बोला जाता है, और वो क्या है, क्या हर्ज है। मक्का वाले बाप दादा के नाम पर कुछ फजूल काम करते थे, मसलन कुछ जानवरों को एक खास उम्र पे पहुंचने के बाद आजाद छोड़ देते थे। मसलन हाम, जिसका तस्करा इधर आया, ऐसे ऊंट को कहते थे जिसकी वजह से 10 बच्चे पैदा हो जाएं। अब जब 10 बच्चे किसी ऊंट की वजह से पैदा होते थे, उस ऊंट को बुजुर्ग समझते थे, उसको खुला छोड़ देते, खेतों में जाता, पानी पीता, चरता चुगता, ना उसकी सवारी को करता और ना उसका गोश्त कोई खाता। क्यों? ये पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल इसी किस्म की रस्में आपने इंटीरियर के इलाकों में देखी होंगी, अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब, कुछ गायें फिर रही होती हैं। क्या है जी, ये अब्दुल कादिर शाह के नाम की गायें हैं, ये लाल शहबाज किलंदर के मजार की गायें हैं। आप जब लोग आके पूछें कि ये क्या कर रहे, तो कहते थे क्या हरज है, क्या फर्क पड़ता है। याद रखिए ये जुमला, क्या हरज है, हक का दुश्मन है। ये जो हक और बातिल की कश्मकश का पारा चल रहा है, इसमें याद रखिए कि हरज ये कि अल्लाह ने नहीं कहा, हरज ये कि अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। अगर फरिश्ते खुद से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लेते, शिर्क होता। अल्लाह के हुक्म पे किया, इबादत है। हुक्म अल्लाह का, अमल हमारा। मस्जिद नबवी की तरह आप देखिए, खाना काबा में जाकर तवाफ करते हैं ना, आप और मैं कोई जाए और मस्जिद नबवी का तवाफ शुरू कर दे, गुनाह होगा। कोई पूछे हरज के, हरज यह कि अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा। तो बहुत सारे लोग खानदान में ऐसी उल्टी सीधी चीजें करते हैं कि जिसमें नाम बाप दादा का लेते हैं, लेकिन असल में ख्वाहिशात होती हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या बाप दादा की बिल्कुल नहीं बात मान सकते? ऐसा नहीं है, बाप दादा की तकलीद की जा सकती है चंद शरायत के साथ। नंबर एक, कोई ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के खिलाफ हो। दूसरी बात है, ऐसा काम नहीं करना जो नबी सल्लम ने ना किया हो। आपने मैंने आज इसी मुआशरे में जिहाद करना है, हम में से किसी को शायद अल्लाह ना करे कभी मौका आए कि किसी मैदान में जाकर बकायदा जंग लड़ें। मेरा आपका जिहाद इस सोसाइटी के इन गंदे और लाइल्मी वाले कामों के साथ है, उनके साथ जाकर इस चीजों को रखें। किस तरीके से कि लोग अपने आप को किस तरीके से गलत चीजों में लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें फिक्र लगा दे, हाँ उनकी कदर करें, बुजुर्गों की किदर करें। आज बड़ा बंदा कोई बात करे तो बुरा लगता है। आज आप देखिए कि कुछ लोग हैं, जब माँ बाप, सास ससुर या बुजुर्ग घर के किसी बात पे रोके, कहते हैं हमें अच्छी नहीं लगती आपकी रोक टोक, जब वो मर जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। यानी फौतशुदा सास सबको अच्छी लगती है, अल्लाह बख्शे बड़ी अच्छी थी अम्मी जान, वो बात कहती थी। अब वो बात कहती थी उस वक्त तो आप बड़ा बुरा मनाती थी, अब ये बात याद की हुई जब आप खुद सास बन गई। तो जिंदगी में याद रखिए कि माजी की शख्सियात को याद करना बहुत आसान होता है, लेकिन आज के मौजूद लोग जो हैं उनको असल में कबूल करना, उनकी अच्छी बातों को लेना बहुत अच्छा है। हमारी माएँ दादियां बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी, आज बच्चियां वो क्यों नहीं पहनती? उनके बाहया लिबास थे, आज वो पहनिए। आज आप देखिए कि अब्बा की तरह अचकन और टोपी पहनी है, वो तो कोई नहीं पहनता, लेकिन बाप दादा के नाम पे सिर्फ रस्में और मेहंदी की रस्में और उबटन की रस्में और कुछ मजहबी रस्में छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि दी दादी अम्मा के हाँ ये कुछ होता था तब होना है। यकीन कीजिए नबी सल्लम का एक बहुत बड़ा जिहाद 13 साल में मक्का वालों की रस्में थी, ये उन्हीं में से उल्टी सीधी रस्में थी। आगे आप पढ़ेंगे आप हंसेंगे, इतनी बेतुकी चीजें करते थे और नाम दीन का रखते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगो तुम इनको इनके हाल पे छोड़ो, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा अहतदैतुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। इस आयत को भी बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। इससे ये नहीं मुराद कि दूसरों को मना करना छोड़ दें, इससे मुराद है कि दूसरों का नाम लेकर खुद बुराई करना छोड़ दें। ये ना कहें कि अच्छा जी अब दूसरा गलत काम करता है तो मैं क्या करूं। कुछ सिस्टर्स हैं वो कहती हैं हमारे मैके में बड़ा अच्छा माहौल था, ससुराल में आए तो देखा सासू अम्मा जो है वो हर हफ्ते पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं, हर जुमेरात को उनको कुछ करना है, हर उनको रजब में कुछ करना है, अब क्या करें, मजबूरी है, फिर हम उनकी तरफ रहे। नहीं, ला यदुर रुको मंदल्ला, आपका दिल हक पे ठुका हुआ है, दलील की ताकत आपके हाथ में, जुबान में मिठास है, दिल में इखलास है, कोई ससुराल आपको बदल नहीं सकता। ये हम अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं करके भेजते कि वो जहाँ के उनकी वहाँ अच्छी भी अपना लेती हैं तो बुरी भी अपना लेती हैं। आप खुद सही रहें, दूसरे इंशाल्लाह खुद ब खुद आपकी सही बात को एक वक्त में आके मानेंगे। अब इसके बाद तवील आयत है जिसको आप कह सकते हैं मौत के वक्त वसीयत की बात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु शहादतु बैनिकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, सोचिए आ सकता है कभी कहीं किसी वक्त, मौत का एहसास बंदे को सीधा कर देता है। दुआ कीजिए कि हमारी मौत ईमान की हालत में आए। मौत एक बहुत बड़ी मुसीबत है, मगर इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि आदमी उसको याद ना रखे, हर वक्त अपनी मौत को याद रखे। आपने फरमाया अक्सिरुल हाजिमुल्लज्जात यानी अल मौत, अक्सर याद किया करो किसको, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को। अब यहां मौत की बात है, और कौन सी मौत है जो सफर में आ रही है। कोई शख्स गैर मुस्लिम मुल्क में गया हो और वहां अचानक उस पर मौत के असरात आ जाए तो क्या करे, और वो वसीयत कर रहा हो कि इसके लिए शहादत का नसाब यह है कि तुम्हारी जमात में से दो साहिब अदल आदमी गवाह बनाए जाएं। अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर लोगों ही में से दो गवाह ले लिए जाएं, फिर अगर शक पड़ जाए तो नमाजों के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए, और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हम किसी जाती फायदे की बस शहादत बेचने वाले नहीं, और खुदा कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं, और ना खुदा वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे, लेकिन अगर पता चल जाए कि इन दोनों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तला किया है तो फिर इनकी जगह दो और शख्स जो इनकी बनिस्बत शहादत देने के लिए अहल तर हों, इन लोगों में से खड़े हों जिनकी हक तलफी हुई हो, और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है, और ये कि हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की, और अगर हम ऐसा करेंगे तो जालिमों में से होंगे। जालिकातना या तो बिशहादत अलावा ही, इस तरीके से ज्यादा तवक्को की जाती है कि लोग ठीक ठीक शहादत देंगे, या कम से कम इस बात का ही खौफ करेंगे कि इनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहेंगे इनकी तरदीद ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, फिर तकवा गया, वत्तकुल्लाह वस्माउ, अल्लाह से डरो और सुनो, और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह नाफरमानों को हिदायत से महरूम कर देता है। याद रखिए इस एक तवील आयत में आपने वसीयत का कानून पढ़ा, पीछे आयते दैन तवील तरीन आयत थी। क्या पता चला, हमारा दीन मामलात को ज्यादा अहमियत देता है। आपको नमाज का तरीका इसमें नहीं मिल रहा, हज का नहीं मिल रहा, जकात का नसाब कुरान में नहीं मिल रहा, ये हकूकुल्ला में से है, अल्लाह ने इसकी हकूक बना दिए और नबी सल्लम के जरिए से पेश कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ मामलात की बात है, हमेशा मामलात के मामले में डरते रहें, किसी का हक लेना, किसी का हक दिया हुआ, जायदाद पे कब्जा किया हुआ, विरासत में कुछ हिस्से में कमी बेशियां कर दी, उससे माफ करा लो, उससे छुड़ा लो, ये सब याद रखिए कि कयामत के दिन लोगों को पुल सरात पे रोक ली जाएंगी इन चीजों को, और वहां जाकर फिर इंसान के तस्वीर होंगे। अल्लाह ताला हमें अपना तकवा अता फरमाए। आखिरी हिस्से से क्या बात पता चली, शायद आपने जल्दी में गौर ना किया हो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फासिकों को हिदायत नहीं मिलती। याद रखिए गाफिलों को हिदायत मिल जाती है, गफलत थी, अल्लाह ने इल्म दिया, गफलत दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बेचारे अभी इधर उधर भटक रहे होते हैं उनको भी हिदायत मिलती है, फासिक को हिदायत नहीं मिलती। और याद कीजिए फासिक कौन है, हिदायत के एतबार से चौथा गिरोह, सूरत बकरा में पढ़ा था, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक्तउना मा अमरल्लाहु बिही। फासिक कौन होता है जो सरेआम गुनाह करे। अक्सर आप देखते हैं जिस्म फरोशी का काम करती हैं औरतें, प्रोस्टिट्यूशन, तवाइफें, क्यों नहीं हिदायत मिलती, फिस्क आ गया। कितने लोग ऐसे हैं शो बिजनेस में जो सरासर गंदे काम करते हैं, आप देखिए कि फिल्मों में वक्ती तौर पे ही सही जो मॉडल्स बनते हैं और जो क्लोज एक्शन दिखाया जाता है और जो बेहुदा हरकतें करते दिखाए जाते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? एक दफा कर लिया बहुत, दूसरी दफा क्यों दिल में ख्याल नहीं आता? क्योंकि अल्लाह हिदायत नहीं देता। तो हमेशा अपने लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे हिदायत पे रखना। और याद रखिए, एक जुमला लिख लें, जिंदगी में हिदायत के जितने ज्यादा मौके आए और उतनों की आप नाकदरी करते जाएं, उतनी ही हिदायत आपसे दूर होती जाएगी। सख्त सजा मिलती है उस बंदे को कि हिदायत उसके घर के करीब है, उसके डोर पे है, उसके चंद कदमों पे, उसकी थोड़ी सी कोशिश और मेहनत पे उसको हिदायत मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को आराम में रखने के लिए उस हिदायत के मौके से फायदा न उठाए। अल्लाह ताला आपको मुझे महरूम लोगों में न कर दे।